पाप ग्रीष्म ऋतु में जल गे सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजो सतत के बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज हम सबके मन में कई बार ये बात आती है कि हमें अपना जीवन अच्छा बनाना चाहिए और कई बार हमारे जीवन में हम कोशिश भी करते हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने की, पर पता नहीं कहां कुछ ऐसा रह जाता है हमसे कि हमारे चाहते हुए भी हम जिस जीवन को पसंद नहीं करते वैसा जीवन हमें जीना, हम नहीं चाहते कि हम इस तरह का जीवन जिए, फिर भी हम वैसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कौन हमें मजबूर करता है? क्या कोई बाहर हमें अपना जीवन जीने के लिए और वो भी ऐसे ढंग से जीने के लिए जिसे हम पसंद नहीं करते कोई मजबूर करता है क्या? लेकिन हम पाते हैं कि नहीं, बाहर कोई नहीं है जो हमारे जीवन को ठीक से जीने में बाधा बनता हो, हमारे भीतर ही कुछ है जो हमारे जीवन को ठीक से जीने में बाधा बनता है। मैंने और हम सब ने अगर कभी अपने जीवन में झांक करके देखा हो तो हम पाते हैं कि सचमुच कुछ है हमारे भीतर जो हमें ठीक से जीने में बाधा बनता है, और वो है हमारा अपना मन, हमारी अपनी भावनाएं, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। मन में जैसा आता है एक क्षण के लिए हमें लगता है कि ये हमारे पतन का कारण बनेगा, लेकिन अगले क्षण वही मन हमें तर्क देता है कि नहीं, इसमें लाभ है। और सारी जिंदगी अगर अपन देखें तो इस लाभ हानि के कैलकुलेशन में, इस लाभ हानि के गणित में, और हम हमेशा ठीक जैसे गैम्बलिंग वाला गैम्बलिंग जब शुरू करता है, जुआ खेलना शुरू करता है, तो वो सोचता है कि जीतूंगा, जबकि उसके पूरे जीवन का अनुभव है कि वो अब तक हारा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हर बार फांसे हाथ में लेकर के बैठता है और कहता है इस बार तो जीत के ही लौटूंगा, जबकि उसे मालूम है कि वो इस बार भी हार के लौटेगा। हमारे साथ भी यही है कि हम ठीक उसी की तरह अपने जीवन में हर बार दांव फेंकते हैं और हार जाते हैं। हमारा मन हमारे पतन में कारण बन जाता है जानबूझ करके, और हम उसे उस दिशा में ले जाते हैं। कभी हम चिंता नहीं करते कि हमारा मन स्वस्थ होना चाहिए। हम इस बात की चिंता तो जरूर करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन हमारा मन निरंतर इस तरह की अस्वस्थता से गुजरता है, इस तरह की दुर्भावनाओं से भरा हुआ रहता है कि जो हमारे पतन का कारण बनता है। मानसिक स्वास्थ्य भी स्वास्थ्य है। अब भले ही हम न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने लगे हैं कि भाई कहीं कोई मानसिक रूप से हम अवसाद से डिप्रेशन से गिर गए हैं, उससे हम बचना चाह रहे हैं, यहां तक तो फिर भी हम कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य क्या है और मैं किस तरह मन की अस्वस्थता से गुजर रहा हूं, इस पर हम कोई विचार नहीं करते। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप भी अपने आप से पूछिए कि दूसरे को अपने सुख के लिए दुख में डालना, ये स्वस्थ मन की बात है या कि मन की अस्वस्थता है? अपने आप से पूछना पड़ेगा। मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, पर आप अपने आप से कि जब हम दूसरे को दुख में डालते हैं अपने थोड़े से सुख के लिए, क्या ये स्वस्थ मन है या कि मन की अस्वस्थता है? कोई भी कह देगा, कहने में क्या देगा, नहीं ये तो ठीक नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन में अब एनालाइज करें कि मैं अपने सुखों के लिए किस किस के जीवन को दुख में और मुश्किल में डालता हूं। मुझे हमेशा अपना सुख छोटा, दूसरे का बड़ा, अपना दुख बड़ा, दूसरे का छोटा मालूम पड़ता है। मेरे ये जो दोहरे मापदंड हैं, क्या मेरे ये स्वस्थ मन की सूचना है या कि मन की अस्वस्थता की सूचना है? हमसे बड़े भाई थे तो उनका विवाह हो गया, तो अब होता ही है कि जब विवाह हो गया तो बहू आई, तो फिर माँ नहीं रह जाती, माँ फिर थोड़ी सी है ना बन जाती है, बनना पड़ता है उसका, है ना, सब समझ गया उसमें। अब एक दिन क्या हुआ कि वैसे तो माँ के लिए सारा काम मैं उनका देख लेता था, अब चूंकि बड़ी वाली बेटे की बहू आ गई है तो अब सारा काम वो देखेगी, और मेरे से अगर कोई गलती हो जाती थी तो माँ कुछ नहीं बोलती। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग कोई बहुत अच्छी सी बात पर और बैठे हुए थे, बात कर रहे थे उतने में, और गैस पर तो दूध रखा गया था और वो उफन के नीचे गिरने लगा, तो गंध आई उसकी, हम लोगों को भी आई। तो मैंने कहा कि गड़बड़ हो गई, अब आपको डांट पड़ेगी। मैंने कहा फिर भी, बोलती कि मैं जा रही हूँ, मैं जा करके देखती हूँ, अम्मा नहीं तो डांटेगी माँ। मैंने कहा नहीं आप बैठो मैं देखता हूँ। मैं फौरन गया, तब तक माँ आकर के और बहुत सारी बातें कह चुकी थी, ये नई बहू आई है, जरा भी रसोई का काम नहीं जानती है और वो दूध गिरा दिया, और ऐसे मुझे कुछ नहीं कहना था, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब हमारी माँ मानी रही, अब सासू हो गई, पारा ठंडा हो गया, समझ में आ गया। मैंने फौरन उनसे कहा कि यदि यही दूध आपके हाथ से गिरता और यही मेरे हाथ से गिर जाता तब आपके मन में वो भाव नहीं आता, वो एक जो पराये घर से आई हुई बेटी है उसके प्रति आपका उसके मन में आपके क्या है, ये स्वस्थ मन नहीं है आपका, ये मन की अस्वस्थता। यहां से शुरू कर रहा हूं, बहुत सांसारिक सी बात, हो सकता है आप मंदिर में बहुत बढ़िया पूजा करने वाले हो, रोज अभिषेक भी करते हैं, मुझे आपसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं, आप घर में किस तरह जीते हैं इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य की मालूम पड़ती है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे। स्वस्थ मन वाला व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसके जीवन में लाभ होता है, वरना पूजा पाठ करके लौटने वाले और वहां जाकर के और अपने घर में जिस तरह दूसरे के जीवन को मुश्किल में और दुख में डालते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि उनके पूजा पाठ का अभी उनके जीवन में कोई असर नहीं है। और यही बात है कि आने वाली पीढ़ी हमारे इन पूजा पाठ करने वाले लोगों से कोई मैसेज नहीं ले पाती, क्योंकि वो देखती है कि इनका घर में व्यवहार तो कुछ और है, और यहां ये बने फिरते हैं बहुत धर्मात्मा। भाई मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप कल के दिन पूजा पाठ छोड़ दें, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ मन क्या होता है इस बारे में विचार करें, ये दोहरे मापदंड छोड़ें कि अपना दुख तो दुख मालूम पड़ता है और दूसरे का दुख दुख नहीं मालूम पड़ता। अपने सुख के लिए हम चाहे जैसा करना पसंद करेंगे, दूसरे का भी सुख दुख है कि नहीं है, इतना थोड़ा सा विचार करना शुरू करें तो हमारा स्वस्थ मन तब कहलाएगा जब हम अपने सुख के जैसे ही दूसरे को भी सुखी देखना चाहें, और अपने दुख में जैसे हम दुखी होते हैं वैसे ही दूसरा भी अपने दुख से दुखी है, उसका दुख दूर करने के लिए हम प्रयत्नशील रहें, ये स्वस्थ मन कहलाएगा। नामदेव हुए हैं एक उधर महाराष्ट्र में, वो साधु और संत की तरह माने जाते रहे हैं। उनके बचपन की घटना है, 10-11 बरस के रहे होंगे और माँ को कोई स्किन डिजीज हो गई, तो उस पर लगाने के लिए कोई वृक्ष की छाल चाहिए थी जिससे कि वो ठीक हो जाए, शायद नीम के वृक्ष की छाल। तो उन्हें अपने बेटे से कहा कि जाओ नीम के पेड़ में से छाल लेकर के आओ। तो चले नामदेव हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर के, और जब पेड़ के पास पहुंचे और सोचा कि इसकी छाल निकालूं, तो जैसे ही थोड़ी सी छाल निकाली और मन में विचार आया कि ये भी तो अपना जीवन जीता है। इसे जब मैं कुल्हाड़ी चला करके और ऊपर की छाल निकाल रहा हूं तो दुख तो हो रहा होगा, अब इसे कैसा दुख होता होगा ये तो मुझे नहीं मालूम। अब ये कैसे मालूम पड़े कि इसको दुख कैसे होता होगा? एक ही उपाय है, मेरी भी तो ये छाल ही है जो मेरे इधर ऊपर लगी हुई है, जैसे इस पेड़ पर छाल लगी है वैसे मेरे ऊपर भी ये लगी, मैं इसको निकाल करके देखूं, इसको निकालने से मुझे जैसा दुख होगा मैं समझ जाऊंगा कि इसे भी ऐसा ही दुख हो रहा होगा। बहुत मुश्किल है ऐसा विचार आना, बहुत मुश्किल है। ये स्वस्थ मन जिसका होगा उसके अंदर आएगा विचार। बाकी अपन सब अपने मन को देखें तो अपने सुख के लिए चाहे जितना दूसरे को दुख में डालना पड़े तैयार हो जाते हैं, मुझे सुख मिलना चाहिए। अब शुरू हो गए वो उसी कुल्हाड़ी से अपने जंघा में से निकालना शुरू किया, ऊपर ऊपर धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो गया, जोर से निकाल दी, खून निकलने लगा। अब समझ में आ गया छाल वहीं पेड़ के ऊपर ज्यों की त्यों लगी रहने दी, थोड़ी सी तो निकाल पाए थे और लहू लुहान पूरी धोती भीग गई है खून से, चुपचाप वापिस लौट आए घर। मां तो देख करके घबरा गई, क्या हुआ, किसने मार दिया, कहां गिर गए? लेकिन रो तो है ही नहीं रहे, आंसू भी नहीं है, इसका मतलब है कुछ और बात है। 10-11 वर्ष के बेटे से सिर पर हाथ फेर के पूछती है कि क्या हुआ, कैसे ये सब हुआ? तब ये कहते हुए आंख से आंसू आ गए कि मां अब मुझसे कभी भी किसी वृक्ष की छाल निकाल के लाने के लिए मत कह। क्यों, क्या हुआ? मां मैं छाल निकालने लगा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इसे दुख होता होगा, पर उससे कैसा दुख होता होगा ये मेरे समझ में नहीं आया। तब फिर मैंने अपने जंघा में उसी कुल्हाड़ी से जब खाल निकालना शुरू की तो मुझे बहुत दुख हुआ। मां ऐसे ही उस पेड़ को भी दुख होता होगा, मुझसे अब कभी किसी वृक्ष की छाल निकालने के लिए। ये तो एक उदाहरण है किसी के जीवन का है, क्या अपने जीवन का ये उदाहरण नहीं बन सकता? ये तो दूसरे के जीवन का, उनका जीवन होगा बहुत संवेदनशील, उनका जीवन होगा बहुत साधु और सज्जनों जैसा, क्या हमारा जीवन ऐसा नहीं बन सकता? क्या हमारा मन ऐसा नहीं हो सकता? दिन भर में एक मौके पर ही सही, चलो मैं अपने सुख के लिए और जैसे मुझे लगे कि किसी और को दुख में डाल रहा हूं या इससे दूसरे की क्षति होगी, क्या दिन भर में किसी एक सुख को छोड़ नहीं सकता दूसरे को सुखी बनाने के लिए? क्या इतना सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हम? अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो मानिएगा अब हमारा मन स्वस्थ होना शुरू हो गया है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अभी हमारा मन अस्वस्थ है। दूसरी चीज, जब भी अपने सुख सुविधा की बात हमारे मन में आती है तब हम किस तरह से सामंजस्य करते हैं इससे मालूम पड़ता है कि हमारा मन कैसा है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। हम अपने सुख के लिए चीजें जुटा करके सामंजस्य करते हैं या कि अपनी श्रेष्ठता बढ़ा करके सामंजस्य करते हैं, दो में से कोई एक उपाय हो। हमें गर्मी लगी, हमने एसी चालू कर दिया या कि कूलर चालू कर दिया, एक उपाय तो ये है। हमें सर्दी लगी, हमने दूसरा उपाय किया, या तो हीटर चालू कर लिया और या और कोई लिहाफ वगैरह ओढ़ करके बैठ गए, ये तरीका है। अपने सुख के लिए हम सुविधा के साधन जुटाते हैं या कि अपने आप को इतना कष्ट सहिष्णु बना लेते हैं कि जब ठंड लगती है तो हम गर्मी का अनुभव करने लगते हैं अपनी सहिष्णुता के चलते, और जब गर्मी का एहसास होता है तब हम अपने आप में आत्मस्थ होकर के और उस गर्मी के बीच भी और बाहर शांति महसूस कर लेते हैं। मुझे तो रोज ऐसी सलाह देने वाले लोग मिल जाते हैं, इस कमरे में दरवाजे इस तरह से हैं, खिड़कियां हैं नहीं तो बहुत गर्मी रहती, आप थोड़ा और दूसरे बैठी ना, नीचे बहुत ठंडा है महाराज, वहां बैठ सकते हैं, छत पर भी, आज तो भक्ति छत पर से कर ले, हाँ कर ले, बहुत आसान है। लेकिन जहां मैंने देखा आचार्य श्री को कि एक जगह चतुर्मास में जहां बैठ जाते हैं फिर चाहे गर्मी हो चाहे बारिश आ जाए चाहे वहां से सर्प भी निकल जाए नैनागिर में, उसी जगह से निकलता था रोज उस पाटे के नीचे से। कई बार कहा कि भगवान दूसरी जगह स्थान बदल लें, नहीं क्या करना यही ठीक। इससे यह सूचित होता है कि हम कितना कष्ट सहिष्णुता अपने भीतर उत्पन्न कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब ऐसा ही करें, मैं ये कह रहा हूं कि जितना हम कर सकते हैं उतना तो करें। ऐसा तो ना हो कि हम बहुत अधिक आराम तलवी सीख जाएं और हम शरीर को जितना सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं दूसरी बाहरी सुख सुविधा की सामग्री जुटा करके, उतना ही हम दूसरे का शोषण और दूसरे को दुख में डालने की प्रक्रिया अपनाते हैं। क्योंकि जब जब हम अपने शरीर को ज्यादा सुख सुविधा देंगे उतने सुख सुविधा के साधन जुटाने के लिए हमें क्या क्या नहीं करना पड़ेगा ये सब जानते हैं। तो हम थोड़ा सा अपने शरीर को इस तरह बनाएं कि वो कष्टों को आसानी से सहन कर सके। जरा सी सर्दी और गर्मी में हम बाहरी सुख सुविधा के साधन जुटाना शुरू कर देते हैं। आज अपन देख तो रहे हैं कि हम लोग कितनी कम सहन शक्ति वाले हो गए। इतना ही नहीं, सिर्फ शरीर की ही विपत्ति में हम व्यथित होते हों ऐसा नहीं, हमारे मन पर भी जब कोई विपरीत प्रतिकूल स्थिति निर्मित हो जाती तब भी हम कितना सहन कर पाते हैं। जरा सी कोई कड़ी बात कह देता है हम कितने विहल हो जाते हैं, कहां है हमारी सहन शक्ति, कितने जल्दी हम एक्साइट हो जाते हैं, कितने जल्दी हम डिप्रेस हो जाते हैं। ये सब चीजें भी हमारे मानसिक अस्वस्थता की सूचक हैं। चार बातें सहन नहीं कर पाते अब घर में एक दूसरे की, बताइए आप नहीं हो रहा है ऐसा? ना शरीर से सहन कर पाते हैं सर्दी गर्मी, और ना हम चार बातें दूसरे की सहन कर पाते हैं। बड़े जल्दी हमारे संबंधों में खटास आ जाती है, रहना साथ में है लेकिन फिर भी। इससे क्या मालूम पड़ता है, हम पढ़े लिखे हैं समझदार हो गए हैं इसके बावजूद भी, जबकि पहले परिवारों में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे। हमारी अम्मा को उनके पिता ने दूसरी पढ़ा करके कहा था कि बड़ी हो गई अब बड़ी लगने लगी, अब रहन तो अब स्कूल नहीं भेजते, दूसरी तरफ पढ़ी थी तो होशियार लेकिन पढ़ाई दूसरी तरफ। अब तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी पढ़े लिखे लोग होकर के भी उनका मन स्वस्थ नहीं है, तो ऐसा लगता कि इस पढ़ाई लिखाई ने क्या करा। अब तो जरा सी बात कोई कह दे अपने मन के प्रतिकूल तो नाराज, को दो चार दिन तक बोले ही नहीं और मन खट्टा कर ले, इतना संकलेश कर ले, इतने कर्म बांध ले कि कुछ मत पूछो। इससे क्या मालूम पड़ता है, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज है। अपने को मन में भी सहनशीलता आनी चाहिए और शरीर भी कष्ट सहिष्णु बनाना चाहिए। मैं गांधी जी के जीवन का उदाहरण हमेशा देता हूं कि वे 15 मुनक्के खाते थे रोज गिन करके, और एक बार नायडू आई उनके भोजन के समय पर और कहा कि अरे वाह बापू को तो इतना काम करना रहता है 15 की जगह 20 मुनक्के कर दो, तो कर दिए। पर बापू तो बापू थे, जैसे उन्होंने देखा कि भोजन में कुछ मुनक्के बढ़ गए हैं तो उन्होंने उस दिन तय कर लिया कि आज तो 15 की जगह 10 ही खाऊं। तो नायडू बोली, घबरा गई वो, बोले अरे बापू क्या करते हैं, कम से कम जितने रोज खाते थे उतने तो खाओ, हमने सोचा कि जैसे 15 वैसे 20। तो बापू बहुत जोर से हंसे, बोले मैंने भी ऐसा सोचा कि जैसे 15 वैसे 10। आप सोच रहे हैं कि जैसे 15 वैसे 20, तो मैं तो ये सोचता हूं कि जैसे 15 वैसे 10, अब तो 10 में ही काम चलाऊंगा। इस तरह भी हम समायोजन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा समायोजन ना करके दूसरे का हिस्सा भी ले लेते हैं तब ये समायोजन हो पाता। मैं आपको बताऊं कि घर गृहस्थी में और अगर हम थोड़ा सा ये समायोजन ये सहिष्णुता सीख लें तो हमारा चित्त कितना प्रसन्न रह सकता है। अकेले धर्म ध्यान मंदिर में ही किया जाता हो ऐसा नहीं है भैया, घर गृहस्थी में भी धर्म ध्यान किया जा सकता है। ये थोड़ी सी कष्ट सहिष्णुता और मन की सहनशीलता दोनों अगर आ जावे तो घर में जब मटर फल्ली आती थी तो महंगी आती थी, पहले अभी भी आती होगी, शुरू में जब आती तो कुछ दिन बहुत महंगी मिलती मटर फल्ली, हमको मटर फल्ली का याद है इसलिए हम, अब तो बहुत सी चीजें महंगी मिलने लगी, तो उस समय पर मटर फल्ली महंगी आती थी तो कितनी लाते थे, एक पाव लिया 250 ग्राम, अब खाने वाले कितने 5, तो एक के जिम्मे कितनी आई 50 ना, और 50 ग्राम मतलब उसमें से छिलके भी निकल गए फिर बची कितनी
200 ग्राम भी नहीं, 150 ग्राम बची वो, उसमें से कितने मटर के दाने आएंगे? एक चम्मच भर सबके जिम्मे। माँ ने सब्जी बनाई और अब हर एक का दायित्व ये है कि वो जैसे ही उसे एक चम्मच परोस दी जाए, उसके बाद परोसने वाली माँ तो और कहेगी कि और ले लो, लेकिन हम कहें कि बस मेरी तो अभी बहुत रखी हुई है अभी नीचे, तब मालूम पड़ेगा कि आपका मन स्वस्थ है। वरना हाँ लाओ, दूसरे के हिस्से की लाओ, माँ के हिस्से की लाओ, पूरी नहीं खाऊं, ये प्रवृत्ति आप नहीं करते होंगे, आप तो बहुत स्वस्थ लोग हैं मानसिक। मैं तो उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो स्वस्थ नहीं है, ऐसा लग रहा है, आप तो ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा करने का मन हो जाए तो ये शोषण है, शोषण, ये मन का अस्वस्थ है। एक घटना सुनाऊं आपको नैनागिरी की, सन 1978 की, आचार्य श्री के जीवन की। हम उस समय गृहस्थी में थे, आचार्य श्री को आहार देने जाया करते थे नैनागिरी, चतुर्मास के दौरान की 78 की बात, बल्कि और पहले की बात, 78 नैनागिरी में से 78, कुंडलपुर की तो 77 और 76 की, 78 में। और वहां पर नैनागिरी में शुरू में तो बाहर वाली, जिनने नैनागिरी के दर्शन किए सिद्ध क्षेत्र के, उनको मालूम है कि बाहर एक नई धर्मशाला बन गई है, भीतर उसके बाद दूसरी धर्मशाला, वो भी अब अच्छी बन गई है, तीसरी वाली भी। लेकिन पहले तीसरी वाली धर्मशाला तो जीर्ण शीर्ण पड़ी थी, कोई नहीं रुकता, गरीब वरीब कोई आता था तो उसको दे दी जाती थी, क्योंकि उनसे क्या मिलने वाला है कि नहीं, हाँ उनसे क्या मिलेगा, जो कोई बड़े आदमी आएंगे तो उनको अच्छे वाले कमरे मिलेंगे। आय क्षेत्र पर हैं लेकिन फिर भी अमीर और गरीब रहता हमेशा हर जगह, ऐसा यहीं पर हो वहां पर हो, ऐसा नहीं सब जगह ऐसे, हाँ, क्योंकि जो जितना जिससे अर्निंग होगी उसको उतना रिस्पेक्ट, जिसके पास जितने गुण होंगे उससे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट नहीं, ये अपना क्राइटेरिया अपन ने बना रखा। ये शायद स्वस्थ मन की बात है ना, ये अस्वस्थ मन की बात। अब उनको दो बूढ़े और एक मैंने उनकी जीवन साथी बूढ़ा व्यक्ति है, उन दोनों को चौका लगाना है, उनको एक बिल्कुल जीर्ण शीर्ण सा कमरा टूटा फूटा दे। हालांकि उसमें महाराज के आहार होना इसकी चिंता नहीं है, देने वाला कैसा है इसकी चिंता। उनको ऐसे ही पढ़ाया जाता, मैनेजर साहब को वहां जो बिठा ले जाते हैं सब जगह, उनको ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि देखो देख करके देना सब उसके, ठीक। अब उन्होंने चौका लगाया, वो तो वहीं खड़े, सब लोग तो आकर के आगे आगे खड़े हो गए कि अपन पहले नंबर खड़े रहो, महाराज आएंगे अपने यहां पर तो आगे। अब उनने सोचा कि अपन इतनी भीड़ में कहीं कोई धक्का वक्का लग जाए, अपन तो अपने चौके के सामने खड़े रहो, आएंगे महाराज तो आ जाएंगे। अब जब पहली धर्मशाला दूसरी क्रॉस करके जाएं तीसरे आंगन में, तब वो खड़े हैं वहां पर, बाकी सब लोग तो आगे आगे खड़े। उस दिन पता नहीं आचार्य ने क्या विचार किया कि जो अपने अपने कमरे के सामने पड़गाने खड़ा होगा वहीं जाएंगे, और आचार्य चले और सब खड़े हैं, सबके सामने से गुजरते जा रहे हैं। अब लोग चौंक रहे हैं कि कहां जा रहे हैं, वहां तो चौके ही नहीं है, लेकिन आचार्य श्री चले जा रहे हैं। तीसरी धर्मशाला में पहुंच गए वो दोनों वृद्ध और वृद्धा, वहां आराम से वो स्वामिन आत्रो वात्रो कहते खड़े, जाकर आचार्य श्री खड़े हो। अब वे गदगद हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं, और भीतर ले जाते हैं। अब बाकी लोग तैयारी में हैं, अरे देखो वहां चले गए, अपने उनके दूध आए ने ठीक से फल फूल होंगे, अपन ले चलो। सो दूध लेके आ रहा है कोई, फल फूल लेकर के आ रहा है, सब खड़े हैं, लेकिन आचार्य श्री भीतर पहुंच करके और चुपचाप ऐसे देख लेते हैं कि कितनी रोटियां हैं, कितनी सब्जी और दाल है। हाँ, ये स्वस्थ मन वाला पहले नंबर देखेगा ये, और देख लिया चुपचाप कितनी रोटियां थी, 6, एक के जिम्मे कितनी आई, दो, तीन प्राणी हैं, एक साधु और दो, तीन प्राणियों के दो आई, और सब्जी दाल है बस। उस दिन आचार्य श्री ने वहीं पहुंच करके निर्णय ले लिया कि बाहर से आने वाली कोई चीज नहीं, बाहर से आने वाले से ले लेंगे लेकिन बाहर से आने वाली कोई चीज नहीं लेंगे। हाँ, जो चौके में है वो ही, और चौके में भी दो रोटी के कितने ग्रास, 8 बनेंगे बस, 8 ग्रास लेऊंगा, दाल सब्जी लेऊंगा, आराम से आचार्य श्री ने, और उतना ही ग्रहण करके चुपचाप वापस आ गए और ध्यान में लीन हो गए। अब बाकी सबका गुणा भाग शुरू, और क्या, आज तो महाराज ने पता नहीं क्या गलती हो गई है, प्रायश्चित कर लिया है, ध्यान में बैठ गए हैं, ऐसी बातें आएंगी? अस्वस्थ मन में तो ऐसी बातें आएंगी, स्वास्थ्य वाली बातें थोड़ी आएंगी, ऐसी मन में आएंगी। अब आचार्य तो नहीं उठे तो नहीं उठे, सवा दो बज गए, ढाई बजे से क्लास होनी है, रोज का क्रम है, हम लोग चिंतित हैं। तो किसी ने हमको कहा कि आप घंटी बजा दो, मैं घंटी बजा दी कि क्लास का टाइम होने वाला है, तो शायद आचार्य को मालूम पड़ जाए समय। अब हर पांच पांच मिनट के बाद मेरे से घंटी बजवा दी, संघ में और महाराज जी थे, उन्होंने कहा घंटी बजा दो, पांच पांच मिनट बजा दी, ढाई बजे भी नहीं उठे आचार्य, पौने तीन बजे जब बहुत ज्यादा शोरगुल होने लगा तब चुपचाप उठ करके आकर के मंच पर बैठ गए, क्लास शुरू हो गई। क्लास पूरी होने के बाद अब लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आचार्य क्या बोलते हैं, आज तो दान देने वाले ने ऐसा उत्कृष्ट दान दिया, इतना मन विशुद्धि से भर गया कि आज तो मेरा मन जाप में ही लग रहा था, बाहर आने का मन ही नहीं हो रहा था जाप छोड़कर, वो तो घंटी बार बार बज रही थी, घंटी बार बार बजने से जो है, और मुझे उठना पड़ा, बाकी दान तो बहुत उत्कृष्ट दिया है। क्या अर्थ हुआ इसका, कितना कितना एडजस्ट किया, दो रोटी खाकर के आए हैं, लेकिन उनके जीवन के लिए क्या संदेश देकर के आए हैं। यह है स्वस्थ मन, जिसमें हम दूसरे का उपकार करने की भावना रखते हैं, अपने सुख के लिए दूसरे को दुख में नहीं डालते हैं, और इतने ही नहीं और प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसा पवित्र आहार करवाया जिससे कि मन भी आज प्रसन्न है। भैया दोनों चीजें आ गई इसमें, ये नहीं मानना कि आपने हलवा और पूरी खिलाया है उसी से मन स्वस्थ होगा, सूखी रोटी भी विशुद्धि पूर्वक दी गई है तब भी वो मन को पवित्र करेगी, शुद्ध करेगी। हमें अपने जीवन में अपने मन को स्वस्थ बनाने वाली चीजें ही ग्रहण करनी चाहिए। ये भी इससे मैसेज मिल गया, क्या खाना क्या नहीं खाना, कितना खाना कब नहीं खाना, क्या पहनना ओढ़ना, ये तीसरे नंबर की चीज है कि हम अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित करें। हम कष्ट सहिष्णु बने, मन से सहनशील बने, दूसरे के दुख का और सुख का विचार करें, और अपनी मर्यादाएं नंबर चार, अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित करें। ये अपनी मर्यादाएं हम स्वयं निर्धारित करना भूल गए, हम पर तो कोई और अंकुश लगाता है, अनुशासन करता है, तब भी हम इरिटेट होते हैं, और अपने आप से हम अपने को अनुशासित नहीं कर पाते हैं, और लापरवाही में हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता है। ऐसा अपने जीवन के प्रति जो लापरवाह है वो कभी मन से स्वस्थ नहीं हो सकता। जो अपने जीवन को अनुशासित करके चलता है, मर्यादित करके चलता है, संकल्प लेके चलता है कि मैं तो अपने जीवन को इस तरह से जीऊंगा, वो कहलाएगा कि हाँ वास्तव में हम दूसरे से तो अपेक्षा रखते हैं कि वो इस तरह से अपने जीवन को संयमित रूप से जिए, और हम अपने आप को अनुशासित, हम दूसरे की लापरवाही पसंद नहीं करते, करते हैं क्या दूसरे की लापरवाही पसंद, बिल्कुल नहीं करते, तो हम फिर अपने जीवन में क्यों लापरवाह हों, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। ये स्वस्थ मन की स्थिति है, और दायित्व का बोध और कर्तव्य का ज्ञान, ये दो चीजें और शामिल हो जाएं तो समझिएगा मन अत्यंत स्वस्थ है। हमारा दायित्व क्या है, जब विनोबा से पूछते थे कि हमारा दायित्व क्या है, तो वो कहते कि इसमें ज्यादा सोचने की क्या बात है, मैं मनुष्य हूं इसलिए मनुष्यता मेरा दायित्व है, मैं जैन हूं इसलिए जैन कुल में जैसे रहा जाता है वो मेरा दायित्व है, इसमें बताने की क्या बात है, मैं मां हूं मेरा दायित्व परिवार के प्रति क्या है, वो जीवन भर रहने वाला दायित्व है, मैं मनुष्य हूं इसलिए मनुष्यता मेरा सबसे बड़ा दायित्व है जीवन भर, क्योंकि मैं जीवन भर मनुष्य तो रहूंगा, फिर अगर मैं मां हूं, अगर मैं पिता हूं, तो फिर मेरा परिवार के प्रति क्या दायित्व है, वो भी जीवन भर रहेगा जब तक कि मैं मां हूं या कि पिता हूं, मैं जैन हूं तो फिर एक जैन होने का मेरा दायित्व क्या है, कर्तव्य की बात नहीं कह रहा हूं, कर्तव्य तो समय पर किया जाता है, दायित्व जीवन भर के लिए निर्धारित हो जाता है, और समय समय पर जिसकी पूर्ति की जाती वो कहलाता कर्तव्य। जैसे विद्यार्थी का दायित्व है कि वो विद्या का अध्ययन करे, लेकिन कर्तव्य क्या है कि वो समय पर पढ़ने के लिए बैठे, नहीं मुझे तो दायित्व है कि मुझे पढ़ना मैं पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं, कर्तव्य का बोध होना चाहिए। जब स्कूल लगेगी तभी, जब स्कूल लगेगी तब तो पढ़ने नहीं जाएंगे, हमारा दायित्व तो है पढ़ने का, हम जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तब पढ़ने जाएंगे। नहीं, जिस समय जो काम करना वो कहलाएगा कर्तव्य, और जीवन भर जो करना वो कहलाएगा कितना स्वस्थ और हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने वाला हो सकता है। हम भूल गए अपना दायित्व, भूल गए अपना, भूल गए कैसे भूल गए, हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का जो दायित्व है क्या हम वो पूरा कर रहे हैं? मनुष्यता हमारा दायित्व है, हमारा मन दूसरे के प्रति कितना सौहार्द से भरा है, हमारा मन दूसरे के प्रति कितनी कृतज्ञता से भरा है, ये सब मनुष्यता की जितनी क्वालिटी है, जितने मानवीय जीवन मूल्य है, क्या वो मानवीय जीवन मूल्य मेरे अंदर है? तब तो मेरे अंदर मानवीयता आएगी, और मैं जिस जगह पर हूं वहां अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समय से पूरा करता हूं कि नहीं। मेरा अपना जिसको क्या कहें, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है कि नहीं? नहीं, चाहे जब जो काम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। खाने के समय पर खाना, नहाने के समय पर नहाना, जैसे कि संसार की क्रियाएं करते हैं, इसी तरह मुझे अपने जीवन के कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कब क्या करना चाहिए ये बोध भी मुझे हो। दो छोटी छोटी सी घटनाएं सुनाऊं तो शायद क्लियर हो जाए, और जितना अपन कर पाए भैया उतना करना। हम तो ऐसा कहते ही रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। हाँ, हमारी बात पर ज्यादा आप परेशान मत होना, नहीं तो आप कहोगे इतनी बातें और कह दी महाराज ने, इनके पास आओ तुझे और मुश्किल में और डाल दी। नहीं भाई, हम तो जीवन को आसान बनाने की प्रक्रिया बता रहे हैं, आपको काहे को मुश्किल में डालेंगे? आपको मुश्किल लगने लगे तो छोड़ दीजिएगा। वास्तव में अभी अपन जो कर रहे हैं उससे जीवन ज्यादा मुश्किल में पड़ रहा है। अगर ऐसा करने लगेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन आदत जिस चीज की हो गई ना, तो ये चीजें सब जो बताई जा रही वो मुश्किल में डालने वाली लगेंगी। वो जो चीजें वास्तव में हमें मुश्किल में डाले हैं वो आसान मालूम पड़ती, इतना ही तो है। वो दृष्टि बदल जाए तो फिर ये सब चीजें आसान लगने लगेंगी कि हाँ, मैंने अपना कर्तव्य समय से किया मुझे बहुत आनंद आया, मैंने अपना दायित्व निर्वाह किया मुझे बहुत आनंद आया। अभी तो हम अपने दायित्व से विमुख होने में ही और आनंद महसूस करते हैं, अभी तो अपनी मर्यादाओं को स्वयं अपने हाथ से तोड़ करके मर्यादा विहीन लापरवाही में जीवन जीने को अपनी शान समझते हैं। अभी तो हम दूसरे के जीवन को दुख में डाल करके अपने सुख के लिए इंतजाम करने में अपनी शान समझते हैं। अभी तो हमने ऐसा बना लिया है जीवन, थोड़ा सा अगर दृष्टि बदलेगी तो ये सारी चीजें जो आज हमें आसान मालूम पड़ती हैं वे हमें मुश्किल लगने लगेंगी, और जो चीजें आज तक हमें मुश्किल मालूम पड़ी हैं वे सब आसान लगने लगेंगी। एक उदाहरण जो मैं आपसे कह रहा था कि किसी राज्य में राजा नहीं रहे तो पहले क्या होता था, कौन बनेगा राजा, वैसा वाला नहीं कह रहा हूं, टेलीविजन वाला कौन बनेगा चक्रवर्ती करोड़पति वाला, वैसा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि उस राज्य में, हाँ, क्योंकि वो जल्दी ध्यान आ जाता है लोगों को, या कि मैं ही ध्यान दिला रहा हूं, ऐसा तो नहीं आपको नहीं आया होगा मैंने ध्यान दिला दिया बेकार में। वो अब राजा की खोज कैसे करें, तो उनके अपने ढंग हुआ करते थे राजा की खोज के। राजा का एक पालतू तोता था, उस तोते को उड़ा दो जिसके कंधे पर बैठ जाएगा वही राजा, क्योंकि राजा को ये तोता बहुत प्यार करता था, जिस व्यक्ति को ये तोता प्यार करेगा वही राजा बन जाए, ऐसा उनका अपना सोच था। आज का सोच अलग है, अब आज की सोच के बारे में कहूंगा तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं कह रहा। यही चलने दें अपन कहानी, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अब उड़ा वो तोता और जंगल में चला गया, सैनिक पीछे पीछे भाग रहे हैं कि किसके बैठता है, इतने सारे लोगों को छोड़ दिया उसने, और जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे लकड़हारा बैठा था, अपने लकड़ी का बोझा नीचे रखे विश्राम कर रहा था, उसके कंधे पर जाकर के बैठ गया। अब क्या करें, अब तोते की बात थी तो तोते ने डिसाइड कर दिया, अब आपको वो डिसीजन मानना पड़ेगा। सबने माना, ले आए उसको आंगन फांगन, लकड़हारे से कहा कि सुनो अब बदलो अपनी ड्रेस व्रेस, बन गए राजा, बैठो गद्दी पर, राजकाज संभालो। उसने कहा ठीक, चला वो राजा की पोशाक पहन के गद्दी पर बैठ गया। अब सारी कार्यवाही तो मंत्रियों ने करी और राजा तो बैठने की चीज है ना, बैठे हैं अपने बस देख रहे हैं कार्यवाही चल रही है, करना क्या है। लेकिन जब राजा अपने सिंहासन से उतरने लगा, वो लकड़हारा बना राजा, तो उसने हाथ ऐसे बढ़ाए दोनों, तो दोनों तरफ से मंत्री जी उठ करके आए और उनको संभाल करके गद्दी से नीचे उतारा। मंत्री जी के चेहरे पर थोड़ी शिकन आ गई, राजा ने देख ली जो राजा बना लकड़हारा था। उसने कहा, मंत्री जी क्या बात है? बोले, कुछ नहीं राजन, बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कल तक तो आप अपने सिर पर इतना बोझा उठा लेते थे और आज आप सिंहासन से उठने पर दो दो लोगों की मदद ले रहे हैं, बड़ा आश्चर्य लग रहा है। तो मालूम क्या जवाब दिया उस लकड़हारे बने हुए राजा ने कि मंत्री जी, मैं तो, आपने मुझे राजा बना दिया है, मेरी क्या सामर्थ, इस पूरे राजकाज का भार तो आप ही मंत्री जनों पर है, मेरा भी भार आप ही के ऊपर है, आप ही को संभालना है एक बात, और दूसरा राजा को तो मंत्रियों के कंधे पर हाथ रख करके चलना ही शोभा देता है, इसलिए मैंने वैसा ही किया। आप देख रहे हैं राजगद्दी पर बैठ करके उस पद पर पहुंच करके मेरा क्या दायित्व है, इस बात का उसे बोध, और इतना ही नहीं उस दायित्व बोध के साथ कर्तव्य बोध भी है कि मुझे मदद तो मंत्रियों से ही लेनी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको नहीं भूलूं, मैं राजा की शान तो बनाए रखूं लेकिन अहंकारी ना हो जाऊं, मैं विनयवान भी रहूं जिनकी मदद से मुझे राज का चलाना है। एक छोटे से व्यक्ति के अंदर इतना बोध कहां से आ गया, और अपन तो बहुत समझदार लोग हैं, फिर भी अपने भीतर ये दायित्व और कर्तव्य का बोध नहीं आ पाता है। ये अगर दोनों चीजें हमारे जीवन में आ जावे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। हम चाहते भी तो यही है कि हम अपनी कोशिश करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, तो इसी भावना के साथ कि हम दूसरे के दुख को भी दुख समझें, अपने दुखों को सहने के लिए शरीर और मन की सहन शक्ति बढ़ाएं, अपनी मर्यादाएं स्वयं निर्धारित करें, और इतने ही नहीं अपने दायित्व और कर्तव्य का अच्छे से पालन ईमानदारी से करते रहें, तो इन छोटी छोटी बातों से भी हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। आज हम भगवान के चरणों में विनय अपनी व्यक्त करते हुए यही भावना भा रहे हैं कि हमें ऐसी सद्बुद्धि देना जिससे कि हम स्वस्थ मन के साथ अपना शेष जीवन जीकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं। अपन नमोकार करते हैं इसी भावना के साथ। ओ
Yeah.
केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मं शरणं पवज्जामि
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन स्वरूप तुम्हारा है जग की नश्वर का सर्वाधिक दर्शन करने वाला है Thank you.
राज्य में स्थानीय जीत व समान समारोह दुर्ग की आयोजित किया जा रहा लड़की से जो व्यक्ति के सिखाए गए
महावीर भगवान इसको चालू कर महावीर भगवान की जय। सीधी सीधी सी बात है कि यहीं के जो रामगंज मंडी के बच्चे हैं केजी वन से लेकर के पीजी तक उन सबके लिए यहां पर और सम्मान किया जाएगा तो बाकी लोग कम से कम ताली बजाने भी आए नहीं तो अकेले बच्चे आ जाए।
महाराज जी
भारत आयोजन
तो
कहता है मैं जाकर भोजन है। Thank you.